संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, इसलिए भगवान आगे के 63वें श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इति ते ज्ञान माख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरम् मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा गुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। व्याख्या। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है, उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। योग युक्त बुद्धि वाले कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्मयोग से हो जाती है। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक। कर्म फल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। आदि श्लोकों से कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्मयोग को गुह्य कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना यह कर्मयोग से भी अधिक महत्व का है, इसलिए इसे गुह्यतर कहते हैं। सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ। 4वें अध्याय का 3रा श्लोक। संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिए ये बातें गुह्यतम हैं। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, फिर तेरे को किंचन मात्र भी करना नहीं है। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक चिंता मत कर। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्वगुह्यतम है, जिसमें कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है। उस योग शास्त्र को परम गुह्य कहा गया है। 18वें अध्याय का 68वां और 75वां श्लोक। विमृश्ये तदशेषेण। गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं, उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें-58वें श्लोकों में अपनी भक्ति की यानी शरणागति की जो बातें कही हैं, उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई हैं, उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। गीता में भक्ति की बातें इन श्लोकों में आई हैं। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरी यानी भगवान की शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। दैवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। नवे अध्याय का 22वां श्लोक। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र पुष्प फल आदि को मैं खाता हूँ, नवे अध्याय का 26वां श्लोक। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, नवे अध्याय का 27वां श्लोक। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा, नवे अध्याय का 28वां श्लोक। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार कर, नवे अध्याय का 34वां श्लोक। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं, 10वें अध्याय के 9वें से 11वें श्लोक तक। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है, 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है, 12वें अध्याय का 2रा श्लोक। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, 12वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। अव्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। सर्वभाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्ववित है, 15वें अध्याय का 19वां श्लोक आदि आदि। विमृश्यै तदशेषेण, कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ा भी संधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख न हो जाए, इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु, पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर, ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता कृपालुता और हितेशिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले 7वें अध्याय के 2रे श्लोक में वक्षाम्य शेषतः, 9वें अध्याय के 1रे श्लोक में इदं तुते गुह्य समं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे, 10वें अध्याय के 1रे श्लोक में वक्ष्यामि हित काम्यया आदि श्लोकों में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव टपकता है। यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है, कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता, इसलिए न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है।